ओम शांति। कहा जाता है यह संसार आशा और विश्वास पर टिका हुआ है। यह संसार आशा और विश्वास के आधार पर चलता है। मानव अपने आशाओं के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, उसमें सफलता हासिल करता है। संसार में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कितना आशावान होते हैं। जैसे कि माता पिता, उनके बच्चों के प्रति आशा होती है कि बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, बच्चे हमारा नाम वाला करेंगे, बच्चे हमारी केयर करेंगे। गवर्नमेंट के जनता के प्रति आशा होती है कि गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें सभी सहयोग करेंगे, उन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर एक अपने हिसाब से पूर्ण सहयोगी बनेंगे, अपना टैक्स पे करेंगे। तो संसार ये आशा और विश्वास पर टिका हुआ है, उसी के आधार से लोग अपने अपने कार्य का आरंभ करते हैं, उसको पूरा भी करते हैं। भगवान जब इस संसार में आते हैं और एक महान कार्य को लेकर के आते हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस कार्य में सफलता हासिल करने के लिए संसार की कुछ ऐसी आत्माओं को सिलेक्ट करते हैं जो आत्माएं संसार से कुछ भिन्न हैं। लास्ट संडे के मुरली में आप हम सभी ने सुना, बाबा ने कहा कि समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हो सकता है हम आप सभी ब्राह्मण बच्चे अपने उस सामर्थ्यता को न जानते हों, अपनी उस योग्यता को, उस विशेषता को न पहचानते हों, लेकिन भगवान को हमारे बारे में ज्ञान है, उसको पता है कि ये संसार के वो आत्माएं हैं जो अगर ये संकल्प कर लें तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आज बाबा ने ऐसी विशेष आत्माओं के प्रति अपनी आशा रखी है, उम्मीद रखी है कि जो हमारा कार्य है विश्व परिवर्तन का, संसार को बदलने का, ये महान आत्माएं हमारे इस कार्य को संपन्न और संपूर्ण बनाने में अपना पूरा पूरा सहयोग देंगे। तो आज आप हम सभी देखेंगे कि आज की बाबा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमारे से क्या क्या आशाएं रखी हुई हैं। साथ साथ जो हमारे जीवन की भी कई आशाएं थी कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, सुखी बने, समृद्ध बने, उसके लिए बाबा ने हमें क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, कौन कौन सी ऐसी ज्ञान की बिंदु, ज्ञान के पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको अप्लाई करने से हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की आशाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। बाबा की आज की मुरली तीन भागों में विभाजित है। मुरली का पहला भाग है बाप दादा की आशाएं, संपन्न और संपूर्ण बनो। मुरली का सेकंड भाग है विदेशी और देश के बच्चों के प्रति बाप दादा का संदेश के रूप में याद प्यार। और मुरली का तीसरा भाग है सिल्वर जुबली के निमित्त आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। तो मुरली के इन तीनों भागों से लगभग 15 पॉइंट्स ऐसे निकाले जिनके माध्यम से हम पूरी मुरली को रिवाइज भी कर सकें, उन मुरली के पॉइंट्स को याद भी रख सकें और बाबा की जो आशाएं हैं उन आशाओं को पूर्ण करने के लिए हम अपना सहयोग दे सकें। तो मुरली का जो पहला भाग है, मुरली का जो हेडिंग है, वो है बाप दादा की आशाएं संपन्न और संपूर्ण बनो। और आज की डेट है, आज की डेट है 14 जून 2020 और मुरली की ओरिजिनल डेट है 22 जनवरी 1986। तो हम देखेंगे बाबा ने मुरली के पहले भाग में क्या क्या कहा है। तो बाबा मुरली के पहले भाग से पहली पॉइंट ली हुई है, दूर देश से बाप और दूर देश से बच्चे। दूर देश में रहने वाला परम धाम निवासी बाप इस पराये देश में आते हैं, पराये राज्य में आते हैं, पराई संस्कृति में आते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। और बाबा ने कहा कि बाप बच्चों की लगन को देख रहे हैं कि बच्चे दूर दूर से कितनी लगन के साथ आते हैं। या मधुबन में ब्राह्मण आत्मा या अपने अपने स्थानों से आते हैं तो हर एक दिल में बहुत सारी लगन होती है और उस लगन को लेकर के वो बाबा से मिलने के लिए मधुबन में आते हैं। जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनकी लगन होती है कि हम जाके बाबा को देखें कि वो दिखाई कैसा देता है, देखने में कैसा आता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में सुना हुआ है कि भगवान हजारों सूर्यों से तेजोमय है। तो भावनाएं तो अभी भी हर एक के दिल में होती हैं, ऐसी भावनाओं को लेकर के मधुबन में आते हैं और सोचते हैं देखेंगे भगवान कैसा दिखाई देता है। कोई कोई आत्माएं तपस्या की लगन को लेकर के आती हैं, सोचते हैं दुनिया का वातावरण बहुत दूषित है, प्रदूषित है, उस वातावरण में रहते हुए एक अच्छी तपस्या करना संभव नहीं है। लेकिन जब मधुबन में जाएंगे, बाप दादा के सम्मुख बैठेंगे तो मधुबन के वातावरण में एक अच्छी तपस्या का अनुभव करके आएंगे। तो कई आत्माएं एक अच्छे अनुभव, अलौकिक अनुभव करने के लक्ष्य से आते हैं, उस लगन को लेकर के मधुबन में आते हैं। तो बाबा ने कहा कि दूर दूर से आत्माएं कितने लगन से आते हैं, बाप दादा भी लगन से आते हैं कि जाकर के बच्चों की पालना करेंगे, बच्चों का श्रृंगार करेंगे, उनको योग्य बनाएंगे। साथ साथ हम सभी ब्राह्मण आत्माएं भी अपनी अपनी लगन को लेकर के मधुबन में आते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों की लगन को देखते हैं कि कितनी लगन से आते हैं, साथ साथ मिलने का धैर्य भी रखा हुआ है, क्योंकि जब बाबा से मिलने का समय होता है तो बड़ा परिवार होता है और इस बड़े परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं, तो उनको फॉलो करना आवश्यक होता है, क्योंकि संसार में हद है। तो इसलिए हरेक को अपने अपने टर्न का इंतजार रहता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों ने धैर्य भी रखा हुआ है, तो बाप दादा बच्चों के उस धैर्य को देखते हैं। तो मुरली के पहले पॉइंट थे दूर देश से बाप और दूर देश से बच्चे। मुरली के सेकंड पॉइंट है डबल विदेशी भाई बहनों की विशेषता। हम सभी जानते हैं कि जो डबल विदेशी भाई बहन हैं, उनमें कुछ ऐसी खूबियां हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो भारतवासी भाई बहनों से भिन्न करती हैं, जैसे कि सच्चाई और सफाई। बाबा हमेशा कहते हैं कि जो विदेश के भाई बहन हैं, विदेश के बच्चे हैं, उनमें ये बहुत बड़ा गुण है, उन्होंने यदि कोई भी गलती की होगी तो उस गलती को भरी सभा में आकर के वो बता देंगे कि हमने ऐसी ऐसी गलती की है और आगे से हम नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि विदेशी भाई बहने एक बार जो संकल्प ले लेते हैं, जो अपना लक्ष्य बना लेते हैं, उसको पूरा करने के लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं, उस पर चल पड़ते हैं। वो समाज का कोई, उनको समाज का कोई भय नहीं होता है, वो संसार के किसी भी सिस्टम और कस्टम को नहीं देखते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। भारतवासियों को भगवान का पूरा ज्ञान मिलने के बाद, समय की पूरी पहचान मिलने के बाद, स्वयं के बारे में भी पूरी ज्ञान पूरा ज्ञान मिलने के बाद भी उनमें समाज का एक भय रहता है कि समाज वाले क्या कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि विदेशी बच्चों की विशेषता है स्नेह। उनमें भगवान के प्रति बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। उस स्नेह से दुनिया के कोने कोने से दौड़ करके मधुबन में आते हैं। तो बाबा ने कहा कि सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल के मिलन के उमंग उत्साह हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं कि दूर बैठे भी कैसे स्नेह के कारण समीप हैं। दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए, लेकिन बाबा कहते हैं उस स्नेह के आधार से, स्नेह की विशेषता के आधार से दूर होते हुए भी बाप के समीप हैं। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। तो विदेशी भाई बहनों की एक विशेषता ये है कि उनमें दृष्टि का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, दृष्टि को बहुत महत्व देते हैं। दूसरी बात, वो कहीं के भी वाइब्रेशन तुरंत कैच कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि रात रात भर जागरण कर दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति को कैच करते हैं। ये विदेशी भाई बहनों की विशेषता है। तीसरी पॉइंट है बाप दादा की आशाएं। तो बाबा ने कहा कि आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं, क्योंकि मुरलियां तो बहुत सुनी हुई है। अब तो बाप दादा यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप में देखना चाहते हैं। उसके लिए बाबा ने कई सारी बातें बताई कि वो सारी बातें आपके प्रैक्टिकल जीवन में होनी चाहिए, वो सारी बातें बाप दादा आपके जीवन से देखना चाहते हैं। जिसमें कि पहली पॉइंट है बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप। भगवान से हमारा बहुत स्नेह है, हम सभी कहते हैं कि भगवान से हमारा अटूट स्नेह है, एक बाप दूसरा ना कोई। लेकिन बाबा कहते हैं कि उस स्नेह का प्रैक्टिकल प्रमाण दो। उसका प्रमाण है कि स्वयं को टर्न करना, जो बाबा कहते हैं उसको जीवन में धारण करना, उसको जीवन में लाना, अपने जीवन का परिवर्तन करना, जो बाबा की आशाएं हैं। दूसरी पॉइंट है संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप। बाबा चाहते हैं कि आप बच्चे अपने आप को बाप के समान संपन्न और संपूर्ण बनाओ। ये हमारी जो अंतिम स्टेज है, अंतिम लक्ष्य है, संपन्नता और संपूर्णता। तो बाबा कहते हैं कि उस स्वरूप को अभी प्रैक्टिकल में दिखाओ, जिसमें आत्मा हर प्रकार से संपन्न है, भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है, वरदानों से संपन्न आत्मा है। और ईश्वरीय सेवा करके जो दुआएं कमाते हैं उन दुआओं से संपन्न है। तो ये संपूर्ण स्वरूप है, संपन्न स्वरूप है। बाबा चाहते हैं वो स्वरूप प्रैक्टिकल में अभी दिखाई दे। तीसरी बात है श्रेष्ठ संकल्प। हमारे संकल्प श्रेष्ठ हो, क्योंकि संकल्प जीवन का आधार है। तो जैसा आधार होगा वैसा ही हमारी जीवन, हमारी एक्टिविटी दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं आपके आपका हर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प हो। चौथी बात है श्रेष्ठ बोल। ब्राह्मणों के बोल श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ अर्थात दूसरों में उमंग उत्साह भरने वाले, दूसरों के कल्याणकारी। किसी आत्मा के प्रति हम यदि कुछ बोलते हैं तो उस आत्मा को उसके दिल में उमंग उत्साह पैदा हो, न कि किसी के दिल में हर्ट पैदा करें। तो ऐसे श्रेष्ठ बोल हो, कल्याणकारी बोल हो, महान बोल हो। अगली बात है श्रेष्ठ कर्म। हमारे कर्म श्रेष्ठ हो, क्योंकि कर्मों को लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही प्रमाण देते हैं कि कौन कैसा है, कौन क्या करता है, किसकी जीवन कैसी है, कौन कितना श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता का आधार है हमारे श्रेष्ठ कर्म। तो हमारे कर्म ऐसे श्रेष्ठ हों जो बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले हों। अगली पॉइंट है संबंध और संपर्क। आप हम सभी एक दो के संबंध संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, कार्य कार्य क्षेत्र पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमारे संबंध संपर्क भी श्रेष्ठ हो, तो बाप दादा ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। संबंधों में कोई भी ऐसी बातें ना हो जो लोग नोट करें कि ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, इनके कहने और करने में अंतर है। तो हमारे जीवन से दूसरों को ऐसी प्रेरणा मिले कि वो भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए तैयार हो जाएं, उनमें भी उमंग उत्साह पैदा हो, तो हमारा संबंध संपर्क ऐसा होना चाहिए। अगले पॉइंट है जो सुना। बाबा ने हमें बहुत सारा सुनाया, बहुत सारा ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं जो सुना, सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता देखनी चाहते हैं। जो हम सुनते हैं वो केवल सुनने तक न रहे, वो हमारे जीवन में, हमारे आचरण में दिखाई भी दे। क्योंकि भगवान हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो केवल सुनने तक के लिए नहीं है, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन का परिवर्तन करने के लिए है, उसको आचरण में लाने के लिए है। तो बाबा कहते हैं जो सुना उसको सुनना और स्वरूप बनना, वो स्वरूप देखना चाहते हैं। अगली आठवीं बात है, आठवीं पॉइंट है प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। बाबा हमारे जीवन को एक परिवर्तित स्वरूप में देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल परिवर्तन, कि हम इस ज्ञान से पहले क्या थे और अभी इतने लंबे समय तक इस ज्ञान को जीवन में धारण करने के बाद, योग की साधना करने के बाद, भगवान की पालना लेने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो बाबा प्रैक्टिकल जीवन के परिवर्तन को देखना चाहते हैं, इसका समारोह देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं इस वर्ष सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली तो मनाई और आगे भी मनाते रहेंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग, सच्चे हीरे, बेदाग हीरे, अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। और उस हार में एक एक हीरा ऐसा बेदाग हो, सच्चा हो, अमूल्य हो, चमकदार हो, जिसकी लाइट माइट दूर दूर तक फैलती हुई नजर आए। हद तक नहीं, बाबा ने कहा कि बाप दादा ने बच्चों के जो अब तक की बच्चों की जो जीवन शैली है, हद के बोल, हद के संकल्प, हद की सेवाएं, हद के संबंध संपर्क बहुत समय तक देखे। बाबा के कहने का भावार्थ है कि अब तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक हद में है, बेहद में नहीं है। बाबा चाहते हैं कि हमारी जीवन शैली ऐसी हो कि जो हमारा सब कुछ बेहद में हो, सब कुछ विश्व के लिए हो, सारे संसार के लिए हो, हमारे संकल्प भी सारे विश्व के प्रति हो, हमारे बोल भी ऐसे हों जो सारे विश्व की आत्माओं के प्रति हों, हमारी सेवाएं भी ऐसी हों जो सारे विश्व की आत्माओं पर उसका प्रभाव पड़े। लेकिन बाबा देखते हैं कहीं ना कहीं हद में, अर्थात हम जिस स्थान पर हैं, जिस डिपार्टमेंट में हैं, जिस सेवा केंद्र पर हैं, या जिस स्थान पर हम रहते हैं, हम कहीं ना कहीं उसी एरिया में फंसे हुए हैं, उसी को हम सब कुछ मान करके चल रहे हैं। जो संसार में कहते हैं कूप मंडूक, एक मेढक की कहानी कहते हैं कि वो जिस तालाब में रहता है उसको ही वो सागर मान के चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम भी ऐसे उस एरिया में रहते हुए उसको ही सब कुछ मान करके चलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने अब तक बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध संपर्क बहुत देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप है तो अभी बेहद की सेवा की आवश्यकता है। बाबा ने कहा उस बेहद के हिसाब से जो कुछ भी आप अभी कर रहे हो वो जैसे कि दीपक की रोशनी के समान है। एक सूर्य की रोशनी और एक दीपक की रोशनी, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। तो अब तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो जैसे कि दीपक की रोशनी के समान है, और बाबा चाहते हैं कि आप सूर्य के समान बनो सारे संसार के लिए। तो उसके लिए लाइट हाउस, माइट हाउस बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बेहद की दृष्टि रखो, सारे संसार के प्रति दृष्टि आपकी हो। जब आपका जीवन शैली, आपका जीवन ऐसा होगा तब सृष्टि का परिवर्तन होगा और संसार की आत्माएं कहेंगी, संसार में ये आवाज गूंजेगा कि जिनको हम ढूंढते थे, जिनको हम खोजते थे, बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, हमारे इष्ट देव, हमारे देव आत्माएं आ गए। तो बाबा कहते हैं अभी यह आवाज देश विदेश तक गूंजना चाहिए, तब संपूर्णता और संपन्नता की समाप्ति होगी, तब कहेंगे संपन्नता और संपूर्णता की स्थिति। इस संसार के सभी सभी आत्माएं जो कहीं ना कहीं अपने अपने इष्ट देवों का आह्वान कर रही हैं, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, चाहे कोई फरिश्तों के रूप में आह्वान कर रहे हैं, या कोई देवताओं के रूप में, देवियों के रूप में आह्वान कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति ऐसी बेहद की हो इस संसार की आत्माओं को उसका अनुभव हो और महसूस करें कि वो हमारे इष्ट देव, बेहद के मालिक, विश्व के मालिक आ गए हैं। तो ये मुरली का पहला भाग था, इसमें विशेष तीन बातें थी। पहली बात थी बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। दूसरी पॉइंट्स थे विदेशी भाई बहनों की विशेषता, और तीसरी पॉइंट थी बाप दादा की आशाएं, जिसमें 10-11 बातें थीं जो बाबा ने आशाओं के रूप में हम सभी के सामने रखी कि बाप दादा की ऐसी आशा है कि अभी हद में नहीं, अभी आप बेहद में जाओ। मुरली का सेकंड भाग है देश विदेश के सभी बच्चों प्रति बाप दादा संदेश के रूप में जो याद प्यार दिए, उसमें से चार पॉइंट्स निकाले, जिसमें पहले पॉइंट है भिन्न भिन्न लहरों के पत्र। बाबा के पास देश प्रदेश से, सभी चारों ओर से अनेक प्रकार के पत्र आते हैं, या आते थे उस समय, और उन पत्रों में हर एक की अपने अपने दिल के उमंग उत्साह, दिल की तरंगें, दिल के जो उद्गार होते हैं, उन्होंने उन पत्रों में वो सब लिख करके बाबा के पास भेजे। तो पहली पॉइंट है भिन्न भिन्न लहरों के पत्र, क्योंकि हर एक के मन में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न होती रहती हैं। किसी के मन में स्नेह की लहरें उत्पन्न होती हैं तो वो उस प्रकार के पत्र लिखते हैं, किसी के मन में वैराग्य की लहरें उत्पन्न होती हैं तो वो अपने पत्रों में उस प्रकार की बातें लिखते हैं, किसी के मन में तपस्या की लहरें उत्पन्न होती हैं तो उन्होंने अपना अपना समाचार पत्रों में लिख करके भेजा। तो बाबा ने उनका जवाब दिया। तो बाबा कहते हैं सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ हैं, और बाप दादा उन लहरों को देख हर्षित होते हैं। बाबा ने कहा कि सभी के उमंग उत्साह के लहरों के पत्र बाप दादा के स्नेह के सागर में समा गए। बाबा कहते हैं उमंग भी बहुत अच्छे हैं और प्लान भी बहुत अच्छे हैं। हर एक ने अपने अपने उमंग, अपने अपने प्लान बाबा को पत्र में लिख के भेजा कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, तपस्या के लिए क्या क्या करने वाले हैं, सेवाओं के लिए क्या क्या करने वाले हैं। हर एक के दिल में, हर एक के मन में जो जो श्रेष्ठ संकल्प है कुछ करने का, चाहे त्याग करने का, तपस्या करने का, कोई विशेष साधना करने का या सेवाएं करने का, उन्होंने हर एक ने अपने अपने उन दिल के उद्गारों को लहरों के रूप में बाबा को पत्र लिखे भेजा और बाबा ने उसका जवाब दिया। लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेने है, अर्थात प्रैक्टिकल में वो सब कुछ करके दिखाना है, जो आपके मन में लहरें उत्पन्न हो रही हैं उन लहरों को अभी प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। और बाबा ने कहा भविष्य के लिए जमा भी करना है। तो ये दूसरी पॉइंट्स थी, पहली पॉइंट्स थी सेकंड ग्रुप की, कि भिन्न भिन्न लहरों के पत्र। दूसरी पॉइंट्स है प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का वर्ष। बाबा ने कहा कि ये वर्ष है प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स के माध्यम से बाप दादा से एक्स्ट्रा मदद लेने, प्रैक्टिकल में करके दिखाने का। तो बाबा इस वर्ष के लिए कहते हैं कि यह एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के वर्ष है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे थे, इसलिए जो समय प्रति समय इशारे मिलते हैं, बाबा हमें कई प्रकार के इशारे देते हैं, बाबा ने कहा कि जो समय प्रति समय इशारे मिलते हैं उन इशारों को हर एक अपने प्रति समझ करके कि जी बाबा ने मेरे लिए कहा है, ये खास मुझे कहा है, चाहे त्याग के लिए, चाहे तपस्या के लिए, चाहे सेवा के लिए, चाहे मनसा सेवा के लिए, या जीवन में और बहुत सारी धारणाओं के लिए, उन इशारों को अपने लिए समझ करके प्रैक्टिकल में लाए। तो बाबा ने कहा कि वो नंबर वन ले सकते हैं, क्योंकि बाबा उनको एक्स्ट्रा मदद देगा। तो ये सेकंड पॉइंट थे सेकंड ग्रुप के। तीसरी पॉइंट है उड़ती कला की रेस में विशेष नंबर लेने का वर्ष। बाबा ने कहा उड़ती कला की रेस करो और उसमें विशेष नंबर लो। बाबा कहते हैं विदेश के व देश के बच्चे जिन्होंने दूर बैठे हुए भी समीप के स्नेह का अनुभव किया है और अनुभव उनको होता है, तो बाबा कहते हैं सभी सोचते हैं कहते हैं कि हम यह करेंगे यह करेंगे यह करेंगे, ये हर एक के मन में भाव रहता है दूर बैठे हुए भी कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, हम ऐसा करेंगे, चाहे स्व परिवर्तन के लिए या सेवाओं के लिए। तो बाबा ने कहा कि ऐसा प्रैक्टिकल सेवाओं में सबूत बन ऐसा करके दिखाने का जो चांस है ये अवसर है, इसलिए अभी उड़ती कला की रेस करो। बाबा ने चार सब्जेक्ट हम सभी को दिए हैं और उनके बारे में कहा कि उन चारों ही सब्जेक्ट में, उन चारों ही विषय में उड़ती कला की रेस करो, चाहे याद का सब्जेक्ट हो, सेवा का सब्जेक्ट है, धारणा का सब्जेक्ट, साथ साथ ज्ञान के सब्जेक्ट में, पढ़ाई के सब्जेक्ट में। तो बाबा ने कहा इन चारों ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस करो और बाप दादा से नंबर वन आने का सर्टिफिकेट लो। यह विशेष विशेष वर्ष है ये कि बाबा आपको इस वर्ष में विशेष आपको ये सर्टिफिकेट देगा। हर एक चाहते हैं कि कुछ करें, कुछ नया करें, तो बाबा ने कहा कुछ नया करो, ऐसा कुछ करके दिखाओ, ऐसा कुछ करके दिखाएंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे और आपको देख करके दूसरी आत्माएं भी आगे बढ़ेंगी। तो खूब आगे बढ़ो और औरों को भी बढ़ाओ। सेकंड ग्रुप की चौथी पॉइंट है जहां दिल है वहां धन है। बाबा ने 1 जून की मुरली में भी माताओं से मुलाकात में कहा था कि माताओं की जो कमाई है वो दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं, और दिल की कमाई 1,000 के बराबर है। और बाबा ने कहा कि माताओं के दिल की कमाई से फूरी फूरी से तालाब यज्ञ की स्थापना का कार्य शुरू हुआ। तो बाबा यहां भी कहते हैं जहां दिल है वहां धन है। दिल अर्थात हमारी श्रेष्ठ भावना है, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं। तो जहां हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हैं, शुभ हैं, तो बाबा कहते हैं वहां धन स्वतः ही आकर्षित होता है। सारी बात है हमारी भावनाओं के ऊपर, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हैं, महान हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं, स्वार्थ की हैं, कैसी हैं। यदि भावनाएं श्रेष्ठ हैं, जैसे मधुबन में आने के लिए या समर्पित होने के लिए जिन आत्माओं के दिल में सच्ची लगन थी कि हमें मधुबन में समर्पित होना है या सेवा केंद्र पर समर्पित होना है, तो उनकी सच्ची लगन थी। बेशक उनके सामने कोई प्लान नहीं था कि हमें कैसे वहां पर अपने आप को सेटल करना है, लेकिन उनकी उस सच्ची लगन ने उनको उस लक्ष्य तक पहुंचा दिया, चाहे मधुबन निवासी बना दिया, चाहे सेवा केंद्र पर समर्पित जीवन जीने का, तपस्या करने का जो लाभ है उसके लिए उनको योग बना दिया। तो बाबा कहते जहां सच्चे दिल है वहां सब कुछ सहज है, वहां धन स्वतः ही आकर्षित होता है। कोई कहे कि हमारे दिल तो है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। कई भाई बहन ऐसे कहते हैं कि हमारी इच्छा तो है, हमारे दिल बहुत है कि मधुबन में आकर के बाबा से मिले, मधुबन में आकर के तपस्या करें, मधुबन में आकर के सेवाएं करें, लेकिन हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम नहीं आ पाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाप ऐसा नहीं मानते हैं, जहां दिल है वहां धन स्वतः ही आकर्षित होकर के आता है। बाबा कहते हैं कि जहां दिल है वहां बाबा कोई ना कोई प्रकार की उनको टचिंग करा करके उनके लिए धन की व्यवस्था कर देगा। लेकिन सच्चे दिल होने चाहिए, दिल है तो। बाबा ने कहा दिल बड़ी करेंगे तो सागर में पहुंचना सहज हो जाता है। कोई कहे धन नहीं लेकिन दिल है तो बाबा इसको नहीं मानते हैं। दिल वाले को किसी ना किसी प्रकार की टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। बावन का मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुणा लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाते हैं। तो ये मुरली का सेकंड भाग था, इसमें चार बातें थीं। पहली बात थी भिन्न भिन्न स्नेह के पत्र, भिन्न भिन्न लहरों के पत्र। सेकंड पॉइंट थे प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मदद लेने का वर्ष। तीसरी पॉइंट मूर्ति कला की रेस में विशेष नंबर लेने का वर्ष। और चौथी पॉइंट जहां दिल है वहां धन है। मुरली का थर्ड भाग, थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग है सिल्वर जुबली में जो जो बहनें आई हुई हैं, टीचर्स बहनें, उनके प्रति बाबा के महाभाग के। तो इसमें लगभग सात बातें हैं, सात पॉइंट्स हैं। इसमें पहली पॉइंट है प्लान। तो बाबा ने कहा कि स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का प्लान बहुत बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सभी ने सिल्वर जुबली मनाई। बाबा कहते हैं बनना तो गोल्डन एज है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। तो गोल्डन एजेड बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है? बेशक मनाई सभी ने सिल्वर जुबली है, लेकिन बनने का लक्ष्य क्या है? गोल्डन एजेड। तो गोल्डन एजेड बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है, बाबा पूछते हैं। और बाबा कहते हैं कि सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, जो भी सेवा केंद्र पर रहने वाली टीचर्स बहने हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं के प्लान तो बनाते ही रहते हैं कि कब कहाँ क्या करना है, कहाँ प्रदर्शनी करनी है, कहाँ मेले करने हैं, किस समय कहाँ सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं सेवा का प्लान तो बनाते ही हो कि अपने अपने स्थान पर यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन स्व परिवर्तन और बेहद विश्व का परिवर्तन, इसके लिए आपने क्या प्लान बनाया है? बाबा कहते हैं सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन स्व परिवर्तन के लिए और बेहद विश्व का परिवर्तन करना, जो भगवान का लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया है? बाबा कहते हैं बुद्धि में मर्ज होता है कि हमें इतने बड़े विश्व का कल्याण करना है, क्योंकि आपका टाइटल ही है विश्व परिवर्तक, न कि हद का हद के परिवर्तक। बाबा कहते हैं कभी ख्याल आता है विश्व के बारे में, या अपने ही एरिया में बिजी रहते हो, जिसका जो स्थान है, जो भी सेवा स्थान है, कोई डिपार्टमेंट्स है, कोई सेवा केंद्र है। तो बाबा कहते हैं उसी में आपकी बुद्धि इंगेज तो इंगेज रहती है, या विश्व के प्रति भी आपके विचार चलते हैं कि सारे संसार का हमें कल्याण करना है, क्योंकि हमारा टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी, और हमारा लक्ष्य भी है कि हमें विश्व का मालिक बनना है, ना कि कोई एक एरिया का मालिक, कोई स्टेट का मालिक। तो बाबा ने कहा आपका लक्ष्य है विश्व का मालिक बनना और आपका टाइटल भी है विश्व कल्याणकारी। तो ऐसे आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके दिल में ख्याल चलते हैं, या उस हद में ही बिजी है और सोचते हैं कि ये तो बड़ों का काम है, जो बड़े हैं, सीनियर हैं, ये उनका काम है, बाबा ने कहा नहीं, ये हर एक का, ये हर एक के लिए ये लक्ष्य है और हर एक का ये कार्य है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम विश्व के मालिक बने और हमारा टाइटल भी है विश्व कल्याणकारी। बाबा ने कहा जब आप में ऐसा उमंग पैदा होगा तो संसार के अन्य आत्माओं में भी वो बेहद की भावनाएं पैदा होंगी। इसके लिए आवश्यक है कि बंधन मुक्त बनना। मनुष्य की नेचर होती है कि जो जहां रहता है, जहां जो भी कार्य करता है, जिनके संबंध संपर्क में आता है, तो व्यक्ति उनसे अटैच्ड हो जाता है, चाहते हुए भी उनसे छूट नहीं पाता है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए यदि आपको बेहद विश्व का परिवर्तन करना है, स्वयं का परिवर्तन करना है, इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आपको सहयोगी बनना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि आपका लगाव कहीं पर भी ना हो, कोई भी बंधन में बंधे हुए ना हो, हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो। जब हर प्रकार के बंधन से मुक्त होंगे तभी आप ये कार्य कर सकेंगे, विश्व कल्याण का कार्य। तो पहले पॉइंट थे प्लान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का प्लान। सेकेंड पॉइंट है जो ओटेश अर्जुन। बाबा कहते हैं कि आप सभी हर वर्ष हर समय दृढ़ संकल्प करते हो, जब भी कोई ऐसा अवसर आता है, जैसे कि कहीं कभी भट्टी करते हैं, तो उसमें दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम हमारे में जो जो कमी कमजोरियां हैं उसको आज से खत्म करके हम जाएंगे, या कुछ जीवन में धारण करने के लिए संकल्प लेते हैं कि आज से हम ये पुरुषार्थ करके अपने जीवन में ये विशेषता, ये गुण, ये कला ला करके ही रहेंगे। ऐसे संकल्प करके जाते हैं और कहते हैं कि हमारा ये दृढ़ संकल्प है, ये आज से हम ये करके दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब भी ऐसा कोई अवसर आता है, चाहे समर्पण समारोह है, भट्टियों के प्रोग्राम होते हैं, या बाबा से मिलने जब आते हैं, तो हरेक के मन में जो संकल्प, जो उमंग उत्साह आता है, क्योंकि उस समय का जो वातावरण है वो पॉजिटिव होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, और हर एक के मन में उस समय अच्छे अच्छे संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प, कुछ करने के संकल्प उत्पन्न होते हैं। तो उस समय सभी दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन बाद में जब अपने अपने फील्ड में जाते हैं तो वो संकल्प सोडा वाटर बन जाता है, वो संकल्प जैसे कि साधारण संकल्प हो जाता है। तो बाबा ने कहा संकल्प तो लेते हो लेकिन वो संकल्प प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगर संकल्प दृढ़ हो तो बार बार संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। जैसे भीष्म पितामह ने एक बार दृढ़ संकल्प लिया तो उसने जीवन में प्रैक्टिकल में उसके जीवन में प्रैक्टिकल वो सारी बातें देखने में आई, आजीवन तक उस संकल्प को उसने पालन किया। तो बाबा ने कहा कि आपका अगर दृढ़ संकल्प है तो बार बार संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प तो आप लेते हो लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं। ब्राह्मण जीवन में हम सभी समाज के साथ कनेक्ट हैं, समाज से हटकर के हम इस जीवन में नहीं चलते हैं। समाज के साथ रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, अपना काम काज करते हुए, कारोबार करते हुए, जो जिस फील्ड में रहते हैं वो सब कुछ करते हुए हमारा ये पुरुषार्थ चलता है, हम ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप प्लान तो बनाते हो लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में समस्याएं भी बहुत आती हैं। तो जब जीवन में समस्याएं आती हैं, समस्याओं का जब बार 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 होता है, तो आत्मा का जो श्रेष्ठ संकल्प होता है वो संकल्प आहिस्ते आहिस्ते ढीला पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा कि समस्याएं तो जीवन में आएंगी और अंत तक भी आएंगी, ऐसा नहीं कि हमने संकल्प किया तो हमारे सामने कोई समस्या नहीं आएगी। और वैसे भी हर एक का ये अनुभव है कि जब जब जिसने जो भी दृढ़ संकल्प लिया तो उसके जीवन में उसी दिन से, उसी समय से कोई ना कोई समस्या आना शुरू हो जाती है। तो समस्याएं तो आती रहेंगी और अंत तक आएंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर हमेशा कायम रहना है। अगली पॉइंट है, तीसरी पॉइंट है संगठन का फायदा और नुकसान। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि संगठन में बहुत सारे फायदे भी हैं और संगठन में कई बातों का नुकसान भी होता है। वो कब होता है? जब हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। जब हम नए नए होते हैं तो हमें हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई कला, कोई ना कोई योग्यता दिखाई देती है। लेकिन जब हम लंबे समय तक उनके संबंध संपर्क में आते हैं तो फिर हमें उनकी कमी कमजोरियां दिखाई देने लगती हैं। तो बाबा ने कहा संगठन का ये फायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन वो होता कब है? जब हमारा अपने पर फोकस ना होकर के दूसरों पर होता है। यदि हमारा लक्ष्य दृढ़ है, हमारा अपने पर पूरा अटेंशन है, फोकस है, हम अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, तो संगठन में जो कई आत्माओं की कुछ नेगेटिविटी, कुछ कमी कमजोरियां दिखाई देती हैं, वो कमी कमजोरियां हमारे पर हावी नहीं होंगी, अर्थात उनका हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हमारा लक्ष्य दृढ़ है, हमारा अपने पर फोकस है, तो यदि हमारा अपने पर फोकस नहीं है तो दूसरी आत्माओं की कमी कमजोरियां, उनके संस्कार, उनकी आदतें, वो दिखाई देती हैं। लेकिन संगठन का यह नुकसान है। तो बाबा कहते संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है, साथ साथ अलबेलापन भी होता है। क्योंकि अगर कोई गलती कर रहा है तो सोचते हैं उसने किया तो, या वो कर सकता है तो हमने किया तो कौन सी बड़ी बात है। कोई यदि हमारे से सीनियर है, पुराना है, और यदि कोई गलती उसने की और फिर हमने भी वही गलती की तो हम क्या कहते हैं कि वो भी करते हैं, हमने किया तो कौन सी बड़ी बात है, हम तो अभी नए हैं। तो बाबा ने कहा ये संगठन का नुकसान है। लेकिन हमें करना क्या है? संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना है। हर एक आत्मा की जो खूबी है, जो विशेषता है, क्योंकि इस ब्राह्मण परिवार में जो भी आत्मा है, बाबा कहते हैं हर एक आत्मा की एक अपनी अपनी विशेषता है, उस विशेषता को देखना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमें अपनी मंजिल को हासिल करना है, हमें अपना परिवर्तन करना है। तो अपने कल्याण के लिए और भगवान के कार्य में सहयोगी बनने के लिए हमें हर आत्मा की विशेषता को नोट करना है, ना कि किसी की कमी कमजोरियों को। यदि हम ऐसा करेंगे, अपने पर अटेंशन रखेंगे, दूसरी आत्माओं से जो उनकी विशेषता है उनको नोट करेंगे, तो बाबा ने कहा कि इससे स्वयं में उमंग उत्साह रहेगा और हम कुछ कर सकेंगे, और हमको देख करके अन्य आत्माएं भी कुछ करने की प्रेरणा लेंगे। तो बाबा ने कहा जो करेगा सो पाएगा, जो ओटे सो अर्जुन। बाबा ऐसी आत्माओं के लिए कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात संगठन में रहते हुए अन्य आत्माओं की विशेषताओं को देखते हुए अपने जीवन में उन विशेषताओं को लाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना, न कि दूसरे की कमी कमजोरियों को देख करके स्वयं भी अलबेले बन जाना और अपनी गलतियों को छुपा लेना। तो बाबा ने कहा जो ओटे सो अर्जुन, जो करेगा वो पाएगा। और साथ साथ ऐसी आत्माओं को देख करके, ऐसी आत्माओं के जीवन शैली को देख करके अन्य आत्माओं के दिल में भी उमंग उत्साह पैदा होगा। अगली चौथी पॉइंट है सिंपल और सैंपल। बाबा ने कहा इस वर्ष हर एक ये समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। बाबा कहते हैं सेवा की प्रवृत्ति जो है वो तो बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति आपकी स्व उन्नति में विघ्न रूप न बने। सेवा करते करते हम कई बार ऐसा देखते हैं कि हमारा जो स्व पुरुषार्थ है वो बीच बीच में कभी ना कभी रुक जाता है। तो बाबा कहते हैं सेवा की प्रवृत्ति आपके स्वोन्नति में विघ्न रूप न बने। अगर सेवा की प्रवृत्ति स्वोन्नति में विघ्न रूप बनती है तो इसका मतलब है वो सच्ची सेवा नहीं है। उस सेवा में कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है, कोई उस सेवा में कहीं ना कहीं कोई नाम मान सम्मान की इच्छा है, उस सेवा में कहीं ना कहीं हम अटैच्ड हैं, क्योंकि ये भगवान के यज्ञ की सेवा है, ये ईश्वरीय सेवा है, और इस सेवा से संसार की आत्माओं का कल्याण हो रहा है। तो जिस सेवा से संसार की आत्माओं का कल्याण हो रहा है, तो उस सेवा को करने से अन्य आत्माओं से दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं हमारे पुरुषार्थ में चार चांद लगाती हैं, लगा देती हैं। तो यदि सेवाओं में ऐसा नहीं होता है, तो जरूर सेवा में कहीं ना कहीं कोई हमारी भावनाएं, हमारी भावना में कोई नुक्स है, कहीं ना कहीं हम उसमें फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं नाम मान सम्मान की इच्छा है, या सेवा केवल दिखावे की सेवा है, सच्चे दिल से सेवा नहीं कर रहे। यदि सच्चे दिल की सेवा हो तो स्वोन्नति में कभी भी विघ्न रूप नहीं बनेगी। तो ये चौथी चौथी पॉइंट थी, सिंपल और सिंपल बनना है। पांचवी पॉइंट है, संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत। बाबा ने यहां कई विशेष आत्माओं का एग्जाम्पल दिया, दादियों का एग्जाम्पल दिया, साकर बाबा का, मम्मा का एग्जाम्पल दिया। तो बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण संसार में जैसे गोल्डन जुबली वालों ने अपने प्रैक्टिकल जीवन का प्रूफ दिया, और उसका प्रूफ है कि इन्होंने सेवाओं को आगे बढ़ाया, उनके सेवाओं में वृद्धि भी हुई और सेवाओं में सफलता भी मिली। उनके प्रैक्टिकल जीवन का प्रूफ है कि उन्होंने सेवाओं को बढ़ाया भी और सेवाओं में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार से जो सिल्वर जुबली वाले टीचर्स बने हैं, बाबा कहते हैं आपको भी ऐसा स्नेह का संगठन बनाना है जो कि किले के रूप में हो। बाबा ने एग्जाम्पल दिया जैसे एक छोटा सा एटम बम कितना कमाल कर सकता है, कितना कमाल करता है। तो इतने बड़ा ग्रुप जो है, इतनी टीचर्स बने हैं, ये क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए संस्कार मिलन की रास होना बहुत जरूरी है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया दीदियां और दादियां जो उनसे सीनियर हैं, बाबा ने कहा कि उनके संस्कार भी हरेक के अलग अलग हैं, लेकिन संस्कार अलग अलग होते हुए भी सभी का लक्ष्य क्या है कि सब मिलकर के रहें, एक मत होकर के रहें, यूनिटी में रहें। और ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का भी एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा के और मम्मा के संस्कार भी अलग अलग थे, लेकिन उनमें उनका स्नेह कितना गहरा था कि एक ने कहा दूसरे ने माना। तो चाहे दादियां हैं, चाहे बाबा और मम्मा, साकर बाबा मम्मा थे। तो बाबा कहते हैं कि संस्कार मिलन की रास करनी है। इसके लिए एक दो के समीप आने के लिए संस्कारों को मिलाना है। संस्कार भिन्न भिन्न तो हैं और अंत तक रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इस संगठन को मजबूत करने के लिए संस्कारों को मिला के चलना है। अगली पॉइंट है, सातवीं पॉइंट है, आज्ञाकारी बनने का बल। तो बाबा कहते जिन्होंने शुरू से लेकर के एवर रेडी बनने का पाठ पक्का किया है, उनको गुप्त रूप में मदद मिलती रहती है। उनके अंदर ही अंदर ऐसा बल भर जाता है कि कोई भी कार्य वो करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगली पॉइंट है, त्याग ही भाग्य है। उस वर्ष बाबा ने सभी बहनों को कहा था कि इस वर्ष सभी को एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर बदली करेंगे। तो बाबा ने कहा कि जो आत्माएं एवर रेडी है, जिन्हों का हैंड्स ऑफ है, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया हुआ है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बाबा ने कहा जिन्होंने त्याग किया हुआ है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होने से बहुत सारे फायदे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति किसी एक स्थान पर लंबे समय तक रहता है तो वहां उसका अटैचमेंट हो ही जाता है। लेकिन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई कहीं जाता है, वहां सेटल होता है, तो एक लंबे समय तक पुनः फिर से उमंग उत्साह जागृत हो जाता है और साथ साथ अन्य स्थानों की विशेषताएं, अन्य आत्मक विशेषताएं भी दिखाई देती हैं। तो बाबा कहते हैं, जहां त्याग है वहां भाग्य है। तो जो ऑफर करेंगे उनको ऑफरिंग मिलेगी। मुरली में सेकंड ग्रुप है। बाबा कहते हैं, याद और सेवा का बैलेंस। ब्राह्मण जीवन में हम कहीं ना कहीं ये गलती कर देते हैं कि कभी कभी हमारा याद का जो पारा है, याद का जो पलड़ा है, वो भारी हो जाता है और कभी कभी सेवा का पलड़ा भारी हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण जीवन में इन दोनों का बैलेंस आवश्यक है, क्योंकि जो सेवा है वो वर्तमान और भविष्य दोनों को श्रेष्ठ बनाने वाली है। लेकिन दोनों का बैलेंस होगा तो, नहीं तो हम क्या करते हैं, कभी कभी सेवाओं में इतने खो जाते हैं जो हम याद को भूल जाते हैं। फिर शाम को याद आता है कि हमें सेवाओं में याद को भी ऐड करना था। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन का नेचर क्या है, याद में रहना, और ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है, सेवा। तो इन दोनों को लेकर के हम साथ साथ चलेंगे तो उस ब्राह्मण जीवन में हमेशा हम आगे बढ़ने का अनुभव करते रहेंगे। तो हमें लक्ष्य रखना है कि ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा दोनों का बैलेंस रख करके चलना। तो जी आज की मुरली थी, इसमें लगभग 15 पॉइंट्स थे। पहले पॉइंट थे, पहले पॉइंट कौन से थे? दूर देशवासी बाप और दूर देशवासी बच्चे। दूसरी पॉइंट, विदेशी भाई बहनों की विशेषता। तीसरी पॉइंट, बाप दादा की आशाएं। उसमें कई बातें थी, 7-10-11 बातें थी उसमें। और सेकंड ग्रुप में पहली पॉइंट थी, भिन्न भिन्न लहरें, भिन्न भिन्न लहरों के पत्र। और सेकंड पॉइंट थे, प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स का एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का वर्ष। तीसरी पॉइंट्स थे, उड़ती कला के रेस में विशेष नंबर लेने का वर्ष। और चौथी पॉइंट, जहां दिल है वहां धन है। और मुरली के तीसरे भाग में पहली पॉइंट, प्लान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का प्लान। दूसरी पॉइंट्स, दूसरी पॉइंट्स क्या थे?
विश्व कल्याण का,
हाँ जी, विश्व
विश्व कल्याण स्व परिवर्तन से वेद का परिवर्तन।
दूसरी पॉइंट्स थे, जो ओटे सो अर्जुन। और तीसरी पॉइंट्स है, संगठन में, संगठन का फायदा और नुकसान। चौथी पॉइंट, सिंपल और सैंपल। पांचवी पॉइंट, संस्कार मिलाने से संगठन की मजबूती। पांचवी पॉइंट, त्यागी भाग्य। छठवी पॉइंट, छठवी सातवीं पॉइंट, सातवीं पॉइंट है, आज्ञाकारी बनने का बल। और लास्ट पॉइंट है, याद और सेवा का बैलेंस। तो जी आज की मुरली थी, और आज की मुरली का वरदान, वरदान में बाबा ने कहा है कि कर्मों की गति को जानते हुए संसार की आत्माओं का गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता बाबा। तो बाबा ने कहा कि अभी अपने जीवन की कहानियां
देखने और सुनने में नहीं लगे।
देखने और सुनने में नहीं लगे रहो, लेकिन संसार की आत्माओं के प्रति अभी सोचो, संसार की आत्माओं का उनको गति सदगति देने का अभी फैसला करने का समय है।
दुख अशांति की समस्या का समाधान
हाँ, संसार की आत्माओं, संसार में जो दुख अशांति है उनकी दुख अशांति को मिटाने का भी ये समय है। तो
महादान
इसके लिए महादानी वरदानी बनकर के उनको महादान और वरदान दो। और आज का स्लोगन है, अनुभूति न होना यह युद्ध की स्टेज है। हम योग करते हैं लेकिन कोई भी अनुभूति नहीं होती है तो उस समय लंबे समय तक हम नहीं बैठ सकते हैं। योग की विशेषता है कि योग में अनुभूति हो, अनुभव हो, कोई ना कोई अनुभव हो, शांति का, शक्ति का, खुशी का, आनंद का, प्रेम का। बिना अनुभूति के लंबे समय तक हम योग नहीं कर सकते हैं। तो भावना का अनुभूति ना होना यह युद्ध की स्थिति है, इसलिए योगी बनो योद्धे नहीं। योगी अर्थात लवलीन, योगी अर्थात अनुभवों से संपन्न। तो ये आज की मुरली बाबा की विशेष मुरली है, जिस पर आप हम सभी प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करेंगे और उसको जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति।